प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से आमोस नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है पाप का न्यायोचित दंड। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इसकी भूमिका अर्थात प्रस्तावना को देखा। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इस पुस्तक के एक अध्याय से अध्ययन को आरम्भ करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस पुस्तक के बारे में जानें और इसमें से सीखें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस घड़ी जब हम आमोस नबी की पुस्तक उसके एक अध्याय से अध्ययन को आरंभ करते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, हर एक से अपने वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें ताकि प्रभु इस पुस्तक के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा हम में से प्रत्येक जन अपने जीवन में आत्मिक लाभ उठा सके। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान और चिंताओं में हैं, आप उन पर भी दया दृष्टि करें, उन्हें छुए, चंगाई दें ताकि वे भी भले चंगे होकर आपके नाम को धन्य कहने पाएं, इस अध्ययन का लाभ उठाने पाएं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि हम सब देख रहे थे कि तकवा की मरी भूमि में एक ग्रामीण भेड़ बकरियां चराता था, उसका नाम आमोस था। एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा कि वह इसराइल राज्य में जाकर उन्हें चिताए कि परमेश्वर उनके पापों के कारण उनसे रुष्ट है और उन्हें दंड देना चाहता है। वह उन्हें बंधुआई में भेजेगा। अतः आमोस वहां की राजनगरी बेतेल में जाकर परमेश्वर का वचन सुनाता है। तो वहां का याजक जो राजा का कृपा पात्र था अप्रसन्न होता है और आमोस को धमकी देता है कि वह अपने देश यहूदा को लौट जाए। उसने राजा को भी उसके विरुद्ध भड़काया कि वह उसकी हत्या का षड्यंत्र रच रहा है। तो हमने इन बातों को देखा था और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय एक से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। इसका विषय है पड़ोसी राज्यों को दंड। आमोस एक निर्भीक पुरुष था जो परमेश्वर का वचन लेकर के आया। उत्तरी राज्य इसराइल के बेतेल नगर में ही वह अनजान नहीं था, वह आज भी अनजान है। आमोस होशे का समकालीन था जो एक भविष्यद्वक्ता था। होशे परमेश्वर के प्रेम की चर्चा करता है परंतु उसके न्याय का भी उल्लेख करता है। मेरे विचार में वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। आमोस परमेश्वर के कठोर न्याय और अपरिवर्तनीय धार्मिकता की चर्चा करता है। मेरे प्रियो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आमोस का दृष्टिकोण वैश्विक था। वह संपूर्ण विश्व की चर्चा करता है। उसने पहले पड़ोसी राज्यों के लिए भविष्यवाणी की, उसने उस युग की विश्व शक्तियों के लिए भी भविष्यवाणी की। निसंदेह यशाया, यर्मिया, दानियल और यहेजकेल ने भी अन्य जातियों के लिए दंड की घोषणा की थी, परंतु पहले इसराइल को परमेश्वर के दंड की चेतावनी दी, परंतु आमोस की भविष्यवाणी विपरीत थी। वह पहले पड़ोसी राष्ट्रों को दंड के लिए घोषणा करता है और इसके पश्चात इसराइल के लिए। आमोस ने जब बेतेल में सीरिया, पलिस्ती, फिनेके, एदोम, अमोन और मोआब के लिए परमेश्वर के दंड की घोषणा की, तब सब के सब सभागार में एकत्र हो गए। वह एक बड़ी भीड़ एकत्र कर रहा था। वे मोआबियों के पाप और दंड को सुनकर बहुत खुश थे, परंतु अपने भीतर वे नहीं देख रहे थे। किसी के पुराने पापों की चर्चा सुनकर श्रोता अति प्रसन्न होते हैं, परंतु यदि आप उनके पापों का वर्णन करें तो वे कुपित हो जाते हैं। मेरे विचार में आमोस ने बुद्धिमानी का काम किया कि पहले पड़ोसी राज्यों के लिए दंड की भविष्यवाणी की। वह एक अच्छा वक्ता था, यद्यपि वह एक ग्रामीण था। उसकी भाषा अति उत्तम व्यापक रूप से नहीं थी। मेरे विचार में वह एक महान प्रचारक भी हो सकता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि गांव का व्यक्ति अपने तरीके से परमेश्वर के वचन को उनके तक पहुंचा रहा था, उत्तम काव्य रूप नहीं होने के बाद भी। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए आमोस नबी की पुस्तक उसके एक अध्याय और उसके एक पद को पढ़ते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तकोवा वासी आमोस जो भेड़ बकरियों के लिए चराने वालों में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उज्जियाह के और योआस के पुत्र इसराइल के राजा यरोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इसराइल के विषय में दर्शन देखकर कहे। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है योआस के पुत्र इसराइल के राजा यरोबाम के दिनों में। यह यरोबाम द्वितीय है। भूकंप से 2 वर्ष पहले, 200 वर्ष बाद जकर्या भी इस भूकंप का उल्लेख करता है। येसुफस जो एक इतिहासकार है कहता है कि यह भूकंप राजा उज्जियाह के युग में आया था। इससे प्रकट होता है कि आमोस होशे का समकालीन था। वह आरंभिक भविष्यद्वक्ताओं में से था और उत्तरी राज्य में भविष्यद्वाणी किया करता था। आगे हम पढ़ते हैं आमोस 1 अध्याय उसके 2 पद में। यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और कार्मेल की चोटी झुलस जाएगी। यहां पर लिखा हुआ है यहोवा सियोन से गरजेगा। मेरे प्रियो, यह भाषा बड़ी ही अलंकृत और प्रभावोत्पादक है। आपको स्मरण होगा कि योएल ने भी यही अभिव्यक्ति काम में ली है। जैसे शेर अपने शिकार पर झपटते समय गरजता है, वैसा ही यह है। विश्वास कीजिए, यह आमोस के प्रचार के आरंभ में जन आकर्षण की एक अति उत्तम विधि है। इसका अर्थ था कि पड़ोसी राज्यों को परमेश्वर दंड देने वाला है। तब हम देखते हैं चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और कर्मेल की चोटी झुलस जाएगी। इससे यह प्रकट है कि सूखा पड़ेगा और अकाल संपूर्ण देश को सुखा देगा। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि जब वह इसराइल गया था तब उसने कर्मेल को देखा जहां हाइफा है। वह एक अति रमणीय स्थान है, वहां बड़ी हरियाली और सुंदर फूल हैं। मेरे विचार में आमोस के युग में भी ऐसा ही रहा होगा, परंतु वह कहता है कि वहां सूखा पड़ेगा और सुंदर कर्मेल झुलस जाएगा। मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे सीरिया की निर्दयता का दंड। यह भाग अन्य जातियों पर परमेश्वर के दंड का विवरण सुनाता है। ये राष्ट्र इसराइल के पड़ोसी देश थे। आमोस संपूर्ण विश्व की चर्चा करता है। पुराना नियम स्पष्ट करता है कि यहोवा इसराइल का ही नहीं अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। नए नियम में पौलुस इस तथ्य को स्पष्ट करता है, परमेश्वर अन्य जातियों को दंड भी देता है, परंतु अनुग्रह के इस युग में परमेश्वर अपने नाम के निमित्त एक जन समूह तैयार कर रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसने सांसारिक मामलों में से अपना हाथ हटा लिया है। वह आज भी संसार के विभिन्न राष्ट्रों को दंड देता है और आमोस इस संदर्भ में महान संदेश सुनाता है। सबसे पहला देश सीरिया है, जिसकी राजधानी दमिश्क है। आइए हम पढ़ें आमोस 1 अध्याय उसका 3 पद। लिखा है, यहोवा यूं कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। मेरे प्रियों, ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण। यहां आमोस उनके अपराधों की सूची नहीं दे रहा है, वरन कह रहा है कि 3, 4, 5 या 6 नहीं, अनेक अपराधों के कारण उनके पाप का कटोरा भर गया था और परमेश्वर के दंड को कोई नहीं रोक सकता। सीरिया को दंड अवश्य मिलेगा। तब वह आगे लिखता है, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसी अत्याचार के कारण सीरिया को दंड दिया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इन पेने उपकरणों से उन्होंने गिलाद वासियों को मारा था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 10 अध्याय उसके 32 और 33 पद में लिखा है, उन दिनों यहोवा इसराइल की सीमा को घटाने लगा, इसलिए हजाएल ने इसराइल के उन सारे देशों में उनको मारा। यर्दन से पूर्व की ओर गिलाद का सारा देश और गादी और रुबेनी और मनश्शेही का सारा देश अर्थात अरवेर से लेकर जो अर्नोन की तराई के पास है, गिलाद और बशान तक, सीरिया ने इन सब गोत्रों को नष्ट किया था। मेरे प्रियो, गिलाद का नाम लेने में आमोस का अभिप्राय क्या था? गिलाद यर्दन के पूर्वी तट से गलील सागर तक फैला हुआ था और इस प्रतीक्षा से अलग स्थान पर गाद और रूबेन तथा आधा मनुष्य वास करता था। सीरिया ने सबसे पहले इन पर आक्रमण करके इन्हें नष्ट किया। आज गोलन ऊंचाइयों पर इसराइल और सीरिया में युद्ध होता रहता है। यह स्थान गिलाद क्षेत्र था। परमेश्वर कहता है कि सीरिया के इस अत्याचार के कारण परमेश्वर उन्हें दंड अवश्य देगा। जी हाँ, अत्याचार के कारण परमेश्वर उन्हें दंड देगा। आमोस एक अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम आगे पढ़ते हैं, इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेनहदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवेन नामक तराई के रहने वालों को और वेत एदेन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नष्ट करूंगा और आराम के लोग बंदी होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। राजा हजाएल और बेनहदद के महलों पर आग गिरेगी। यद्यपि दमिश्क सबसे प्राचीन नगर कहलाता है, वह वास्तव में अनेक स्थानों में पलायन कर चुका है। प्राचीन दमिश्क तो दिखाई नहीं देता, अनेक बार वह नगर ध्वंस किया गया, जिनमें से यह घटना एक है। लिखा है, आवेन नामक तराई के रहने वालों को नष्ट करूंगा। बेरूत से दमिश्क की यात्रा में बालबेक नामक एक स्थान आता है जो आवेन की तराई में है। वहां के खंडहर देखने योग्य हैं। मेरे प्रियो, वहां की रमणीयता के कारण रोमियों ने उसे पुनः बसाना चाहा था, जिसका प्रमाण वहां उपस्थित मंदिरों के खंडहर हैं। परंतु बालबेक फिर से नष्ट किया गया और वहां की जनसंख्या पलायन कर चुकी थी, वहां से जा चुकी थी। यहां पर हम पढ़ते हैं, आराम के लोग बंदी होकर धीर को जाएंगे। वे अशुरों द्वारा बंदी बनाए जाएंगे। कीर अशुरों का एक नगर था। वहां का भूगोल जानने से वृतांत को समझना हमारे लिए आसान होता है। आपको स्मरण रखना है कि बाइबल में आप काल्पनिक स्थानों या अंतरिक्ष के विषय नहीं पढ़ते हैं। बाइबल वास्तविकता का वर्णन करती है। बाइबल स्वर्ग का उल्लेख करती है तो वह भी वास्तविक ही है। मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे दास बनाने के लिए पलिस्तियों को दंड। आमोस नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 6 से 8 पद में लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अश्दोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिश्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। लिखा है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण। मेरे प्रियो, हम देख चुके हैं कि यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अनेक अपराध उनके पाप का कटोरा भर रहे हैं। हम देखते हैं कि गाजा पलिस्तियों का नगर था। उन्होंने इसराइलियों को बंदी बनाकर एदोम और फिनेके में दास होने के लिए बेच दिया था। फिनेके एक महान व्यापार का केंद्र था। उन्होंने इसराइलियों को युद्ध बंदी बनाकर बेच दिया था। वे उन्हें संपूर्ण भूमध्य सागर क्षेत्र में ले जाते थे। इसी कारण परमेश्वर पलिस्तिया को दंड देना चाहता था। आज हम जिस स्थान को गाजा पट्टी कहते हैं उसकी सीमा निर्धारित नहीं है। यह आज एक अरबी क्षेत्र है जो इसराइल के अधीन है। इस क्षेत्र के कारण इसराइल को बड़ी परेशानियों का सामना प्रतिदिन करना पड़ रहा है। अश्दोद और अश्कलोन इसराइल के अधीन ही हैं, और अश्दोद में तेल की शोधन शाला है। वहां नया बंदरगाह भी बनाया गया है। वह स्थान हाइफा से भी अधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह होगा। अश्कलोन अश्दोद के सीधा दक्षिण में है। वहां दागोन देवता के मंदिर का खंडहर आज भी पाया जाता है, जहां शमसोन कैद था। इसे हम न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय में पढ़ते हैं। सब स्थान वास्तव में वास्तविक थे। उन्हें ठीक वही दंड मिला जो परमेश्वर ने पहले से कह दिया था। परमेश्वर ने कहा था कि वह गाजा की दीवार पर आग गिराएगा, जिससे वहां के महल भस्म हो जाएंगे। हिजकिया के राज्य काल के इतिहास में हम पढ़ते हैं, दूसरे राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 8 पद में, उसने पलिस्तियों को गाजा और उसकी सीमा तक, पहरुओं के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। मेरे प्रियो, इस प्रकार आमोस की भविष्यवाणी ज्यों की त्यों पूरी हुई। भविष्यवाणी का पूरा होना बड़ी रोचक बात है, और वह भविष्य में परमेश्वर द्वारा भविष्यवाणी की पूर्ति का एक सिद्ध उदाहरण भी है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि समझौता भंग करने के लिए फिनेके को दंड। जी हाँ, अब हम फिनेके के दंड की भविष्यवाणी को पढ़ते हैं। उन्हें इसराइलियों को दासत्व में बेचने का ही नहीं, इसराइल के साथ समझौते को तोड़ने का भी दंड दिया जाएगा। सोर का राजा हीराम वर्षों दाऊद का अच्छा मित्र था। इसराइल या यहूदा के किसी भी राजा ने उन पर कभी आक्रमण नहीं किया था, परंतु फिनेके ने इसराइल के साथ जो किया था उस समझौता उन्होंने नहीं निभाया। आइए हम पढ़ते हैं आमोस की पुस्तक 1 अध्याय उसके 9 पद। लिखा है, यहोवा यूं कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। लिखा है, यहोवा यूं कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण। यूं तो परमेश्वर उनके 100 अपराध गिनवा सकता था, परंतु वह मुख्य मुख्य अपराधों की ही बातें कर रहा है। कहता है, मैं उनका दंड न छोड़ूंगा। उन्होंने एदोम को सब बंदी सौंप दिए थे। उन्होंने दाऊद के भाईचारे का मान नहीं रखा था। दूसरे शब्दों में उन्होंने इसराइल के साथ बांधी वाचा तोड़ दी थी, समझौता तोड़ दिया था। आगे लिखा है आमोस 1 अध्याय के 10 पद में, इसलिए मैं सोर के शहरपनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। मेरे प्रियो, पहले तो अश्शूरों ने सोर पर आक्रमण किया, परंतु असफल रहे, और नबूकदनेस्सर की सेना ने भी आक्रमण किया, और माना जाता है कि नबूकदनेस्सर के आक्रमण एवं घेराव के कारण वे समुद्र में 1.5 मील दूर स्थित एक द्वीप पर जा बसे। क्रोधित होकर नबूकदनेस्सर ने उस वीरान नगर को नष्ट कर दिया। 250 वर्ष बाद सिकंदर महान ने आकर उस समृद्ध एवं धनवान नगर को देखा और वहां तक पहुंचने के लिए समुद्र में मार्ग बनाया। इस काम में उन्होंने पुराने सोर नगर को खुरच कर सारा मलवा समुद्र में डाल दिया। यहां यहेजकेल की भविष्यवाणी पूरी होती है, जो यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 26 अध्याय में की गई थी। सिकंदर महान ने उस नगर को मिट्टी में मिला दिया था, और इस प्रकार आमोस की भविष्यवाणी भी पूरी हुई। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं बदले की भावना के लिए एदोम को दंड। एदोम को दंड देने में परमेश्वर का मुख्य कारण था कि वे अपने इसराइली भाइयों से ईर्ष्या करते थे, और इस कारण उनसे बदला लेने के अवसर को कभी भी नहीं छोड़ते थे। एदोम एसाव वंशी थे और इसराइल याकूब वंशी थे। एसाव और याकूब दोनों ही इसहाक के जुड़वा पुत्र थे। तो आइए हम पढ़ते हैं आमोस की पुस्तक 1 अध्याय उसके 11 और 12 पद को। यहोवा यूं कहता है, एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रखा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोसरा के भवन भस्म हो जाएंगे। मेरे मित्रों, एदोम की राजधानी पेत्रा नगर था, जो चट्टानों को काटकर बसाया गया था। आज यह तेमान का क्षेत्र है। वहां सब कुछ जो जल सकता था जला दिया गया था। बोसरा के महल ध्वंस किए गए और आज उनका नाम भी नहीं है। एदोम के लिए यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। उन्हें दंड देने का कारण था भाइयों से अर्थात इसराइलियों से बदला लेने की भावना। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी कई बार हम अपने भाइयों के साथ बदला लेने की योजना बनाते हैं और उन्हें कष्ट पहुंचाने की योजना बनाते हैं, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी से बदला लें, क्योंकि परमेश्वर हर एक पापों का दंड अर्थात लेखा लेता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।